तत्वार सूत्र लेक्चर नंबर 14 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम सिद्धात्मने नमः नमो हरिहंता नमो सिद्धां नमो
वेतारं कर्म भूतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलभे।
यह तत्वार सूत्र नामक शास्त्र जो आचार्य उमा स्वामी जी ने लिखा है, उसके ऊपर की जो मोक्ष शास्त्र नामक टीका है उसे हम देख रहे हैं। यहाँ पर हम पेज नंबर 42 पर आए हैं, काल और स्थिति में अंतर। थर्टी फोर है आपका, गुजराती में कितना?
34 है।
गुजराती पेज है 34 और हिंदी है 42। अभी यहाँ पर बात बता रहे हैं काल और स्थिति, इसमें क्या अंतर है यानी क्या फर्क है बता रहे हैं। स्थिति शब्द कुछ पदार्थों की काल की मर्यादा बतलाता है। यह शब्द व्याप्य है, काल शब्द व्यापक है और यह समस्त पदार्थों की मर्यादा को बतलाता है। देखो, व्याप्य यानी जो व्याप्ता है, जिसमें व्यापा जाता है वह व्याप्य, और व्यापक यानी जो व्याप्ता है उसको व्यापक कहेंगे। जैसे गाड़ी चलाने वाले को चालक कहते हैं और आजकल की भाषा में कंडक्टर को वाहक कहते हैं, ऐसे ये व्यापक जो अन्य में व्याप्ता है यानी गुण पूरे द्रव्य में व्याप्ता है। इस तरह से यहाँ कह रहे हैं कि स्थिति शब्द कुछ पदार्थों के काल की मर्यादा बतलाता है, यानी मनुष्य भवों की स्थिति कितनी हो सकती है, अधिक से अधिक एक भव की स्थिति। अगर हम पूछेंगे तो कहेंगे कि मनुष्य भव जो है वह अधिक से अधिक तीन पल्ले का हो सकता है। ये कहाँ का होता है मालूम है? उत्तम भोग भूमि का। और कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु कितनी देखी थी कल हमने? 1 करोड़ पूर्व। बहुत अच्छा, ये उसकी स्थिति रही। इसमें भी क्या होता है, काल स्थिति और भव स्थिति। तो अभी हम भव स्थिति की बात कर रहे हैं और काल स्थिति की बात करेंगे। मनुष्य 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 तो हमने देखा था 48, 48 बार उनको जो भव मिलता है उसको कहेंगे कि काल स्थिति। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, स्थिति शब्द कुछ पदार्थों के काल की मर्यादा बतलाता है। यह शब्द व्याप्य है और काल व्यापक है और यह समस्त पदार्थों की मर्यादा को बतलाता है, यानी वो कुछ पदार्थों के लिए स्थिति कहा और यहाँ पर समस्त पदार्थों की मर्यादा को काल कहा। अब यहाँ अलग बात बता रहे हैं, स्थिति शब्द कुछ ही पदार्थों का ज्ञान कराता है और काल शब्द समस्त पदार्थों का ज्ञान कराता है। काल के दो भेद हैं, निश्चय काल और व्यवहार काल। मुख्य काल को निश्चय काल कहते हैं और पर्याय विशिष्ट पदार्थों की मर्यादा बतलाने वाला अर्थात घंटा घड़ी पल आदि व्यवहार काल है। अपनी भाषा में 1 सेकंड 1 मिनट इस तरह से गिनो तो वो उसको कहेंगे व्यवहार का, यानी जो अपन बहुत समझने के लिए कोशिश करेंगे तो आसान तरीका ये है कि काल द्रव्य जो है, तो द्रव्य है तो वो गुण पर्याय सहित होगा, पर्याय सहित है तो उसका जो परिणमन है वो उसको निश्चय काल परिणमन, और एक समय में एक पर्याय बदलती है ये ऐसा कहेंगे तो ये व्यवहार काल हो गया। तो अन्य जीवों की जो पर कितना समय से ये इस पर्याय रूप है ऐसा कहेंगे तो 10 साल से ऐसा ही है, तो उसकी वो पर्याय व्यवहार काल में गिनी जाएगी। तो यहां कहते हैं, फिर से पढ़ता हूं मैं ऊपर से चौथी लाइन, काल के दो भेद है, निश्चय काल और व्यवहार काल। मुख्य काल को निश्चय काल कहते, मुख्य काल को निश्चय काल कहते हैं, और पर्याय विशिष्ट पदार्थों की मर्यादा बतलाने वाला अर्थात घंटा घड़ी पल आदि व्यवहार काल है। काल की मर्यादा को स्थिति कहते हैं, अर्थात स्थिति शब्द इस बात को बतलाता है कि अमुक पदार्थ अमुक स्थान पर इतने समय रहता है। यानी हम कहेंगे ये सूरज आकाश में कितना रहता है तो कहेंगे 12 घंटे में, तो उसकी स्थिति कब कितना है 12 घंटे। इतना काल और स्थिति में अंतर है। अभी भाव शब्द का निक्षेप सूत्र में उल्लेख होने पर भी यहाँ किस लिए कहा है, ये भाव निक्षेप आया था ना, भाव निक्षेप किसको कहना मिली भाई याद है आपको?
वर्तमान काल जो पदार्थ,
हाँ कोई पदार्थ जो पदार्थ है वर्तमान में जिस रूप परिणमित हो रहा है उसको उस रूप कहना, उसको कहेंगे भाव निक्षेप। अभी कह रहे हैं कि भाव शब्द का निक्षेप के सूत्र में उल्लेख होने पर भी यहाँ किस लिए कहा है, फिर दोबारा काल भाव क्यों बता रहे हैं? तो निक्षेप के सूत्र पांचवें में भाव का अर्थ यह है कि वर्तमान में जो अवस्था मौजूद हो उसे भाव निक्षेप समझना। और भविष्य में होने वाली अवस्था को वर्तमान में कहना सूत्र भी निक्षेप है। यहाँ आठवें सूत्र में भाव शब्द से औपशमिक शायिक आदि भावों का ग्रहण किया है, जैसे औपशमिक भी सम्यक दर्शन है और क्षायिक आदि भी सम्यक दर्शन कहे जाते हैं। इस प्रकार दोनों जगह भाव शब्द का पृथक प्रयोजन है, यानी अन्य अन्य अपेक्षा से वहां उसका कथन किया गया है। विस्तृत वर्णन का प्रयोजन, कितने ही शिष्य अल्प कथन से विशेष तात्पर्य समझ लेते हैं और कितने ही शिष्य ऐसे होते हैं कि विस्तार पूर्वक कथन करने पर समझते हैं। परम कल्याण में आचार्य का सभी को तत्वों का स्वरूप समझाने का उद्देश्य है, ये उद्देश्य लिखा है, इसमें गुजराती में, हाँ हमने उद्देश्य ये जो शब्द देखा है तो अपने रॉन्ग लगा था, इधर यही वो शब्द वापरा, अपन देखेंगे तो फिर से। उद्देश्य यानी हेतु होता है ना, अभी आप गुजराती में और मराठी में उद्देश्य ही बोलते हैं, तो आपका इधर आने का उद्देश्य क्या है, क्या मारामारी करने का है क्या, ऐसा
उद्देश्य,
उद्देश्य
आपका क्या उद्देश्य लगाते
हैं। चलो, प्रमाण से ही समस्त पदार्थों का ज्ञान हो सकता है, तथापि विस्तृत कथन से समझ सकने वाले जीवों को निर्देश आदि तथा सत्संख्यादि का ज्ञान कराने के लिए पृथक पृथक सूत्र कहे हैं, ऐसी शंका ठीक नहीं है कि एक सूत्र में दूसरे का समावेश हो जाता है, इसलिए विस्तार पूर्वक कथन व्यर्थ है। अभी ज्ञान संबंधी विशेष स्पष्टीकरण,
ये बात सामने आई,
बोलो।
कोई विस्तार रुचि वाले होते, कोई संक्षेप में समझ जाते, तो संक्षेप में प्रमाण नय से ज्ञान होता है, कह देने से सब उसमें आ जाता है गर्भित हो, परंतु विस्तार से समझने वालों को वो निर्देश आदि वो छह प्रकार है और आगे आठ अन्य, इन सब के द्वारा उसका विस्तार कर करके एक एक विषय को समझाएंगे तो वह है विस्तार कर, और प्रमाण नय से जानना वो है संक्षिप्त।
तो विस्तार रुचि वाले जो होते हैं उनको बहुत लंबा लंबा करके समझावे, डिटेल में समझावे तो समझ में आता है, और कुछ लोगों से थोड़ी सी बात बताने में समझ में आता है। इस सूत्र में ज्ञान संबंधी विशेष स्पष्टीकरण,
अच्छा वो नहीं,
कोई बात नहीं, ये सर हाँ बेन
हमने आगे जो पढ़ा था वो भी हमारे में यहाँ
दर्शन सबको होना चाहिए वगैरह वगैरह,
ये भी पीछे होगा देख लो कहीं होगा, कोई बात नहीं, ये सर्वार्थ सिद्धि जो है सर्वार्थ सिद्धि में से ये कोटेशन लिए हुए हैं। प्रश्न है यानी कि हेडिंग ये है कि ज्ञान संबंधी विशेष स्पष्टीकरण, और उसमें प्रश्न है इस सूत्र के ज्ञान में सत संख्यादि आठ भेद ही क्यों कहे गए हैं, इस सूत्र में ज्ञान के सत संख्यादि आठ भेद ही क्यों कहे गए हैं, कम या अधिक क्यों नहीं कहे गए हैं। तो निम्नलिखित आठ प्रकार का निषेध करने के लिए वे आठ भेद कहे गए हैं। अब क्या कहना चाहते हैं, नास्तिक कहता है कि कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिए सत को सिद्ध करने से उस नास्तिक का तर्क खंडित कर दिया गया है, सत बताकर उनको रूल आउट किया। दूसरा पॉइंट, कोई कहता है कि वस्तु एक ही है, उसमें किसी प्रकार के भेद नहीं है, जैसा हमने देखा ना ब्रह्म सत जगत मिथ्या, यानी एक ही है बाकी कुछ है नहीं, तो इसलिए कहते हैं वस्तु एक ही है उसमें किसी प्रकार के भेद नहीं है, तो संख्या को सिद्ध करने से यह तर्क खंडित कर दिया गया है, यानी संख्या है ये बताएं तो उनका तर्क झूठा नक्की होता है। तीसरा पॉइंट, कोई कहता है कि वस्तु के प्रदेश यानी आकार नहीं है, क्षेत्र के सिद्ध करने से यह तर्क खंडित कर दिया गया है, कौन सा तर्क कि वस्तु को आकार नहीं है या प्रदेश नहीं है। चौथा पॉइंट, कोई कहता है कि वस्तु क्रिया रहित है, स्पर्शन के सिद्ध करने से यह तर्क खंडित कर दिया गया है। अभी यहाँ नोट देते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सो क्रिया है, क्रिया किसको कहना है ये भी बताएं। पांचवा पॉइंट, वस्तु का प्रलय, प्रलय यानी सर्वथा नाश होता है ऐसा कोई मानता है, काल के सिद्ध करने से यह तर्क खंडित कर दिया गया है, यानी जब कोई बताता है कि वस्तु अनादि अनंत है ये तो उसका काल बताया, इसका अर्थ वो कभी नष्ट नहीं होता है, तो ऐसा मानते हैं ना अभी छठवां काल आने के बाद प्रलय होने वाला है, सब नष्ट होगा, ऐसा होगा वैसा होगा,
वस्तु का प्रलय ने सर्वथा क्षणिक वाद जो है कि द्रव्य ही नष्ट होता है ऐसा मानते हैं, कभी समय दर्शन के नहीं, समय दर्शन कितने काल तक रहता है, अंतर्मुख से लगे लगे तक समय शास्त्र साथ, उसका अर्थ क्या है सर्वथा क्षणिक नहीं है, कोई भी वस्तु कितने काल तक रहती है जब सिद्ध करना है उसका अर्थ होता है वो सर्वथा क्षणिक नहीं है, ये बात इससे सिद्ध होती है, यानी क्षणिक ही मानता है सर्वथा प्रलय होना, यानी क्षणिक ही मानता है वो, तो वो बात रूल आउट होती है, ये जो सारे पॉइंट बताए हैं उसके द्वारा अन्य मतियों के निराकरण किए,
ये पॉइंट आगे
क्षणिक वाला
या पांचवा पॉइंट में वस्तु का प्रलय यानी सर्वथा नाश होता है ऐसा कोई मानता है?
शनि वाली बात अंदर से निश्चित होती।
काल के सिद्ध करने से यह तर्क खंडित कर दिया गया। अब छठा पॉइंट है, कोई यह मानता है कि वस्तु क्षणिक है तो अंतर के सिद्ध करने से वह तर्क खंडित हो जाता है। अंतर के सिद्ध करने से यानी ये कोई चीज है, मतलब मान लो कि किसी को, अभी गति की बात तो नहीं बता पाऊंगा मैं, कि मनुष्य में कोई जीव आया है तो वो दोबारा कभी आ सकता है? अर्लीएस्ट जगन्य कितने टाइम में आ सकता है, अधिक से अधिक कितने टाइम में आ सकता है? ये बात जब हम अंतर के द्वारा बताते हैं तो वही वस्तु दोबारा अस्तित्व में आएगी, इसलिए कहते हैं कि हम मानते हैं कि वस्तु क्षणिक है।
क्षणिक मानने बात, वाले पूरे द्रव्य को ही क्षणिक मानते हैं। परंतु यहाँ हम क्या, जैसे किसी गुणस्थान की बात, पहला गुणस्थान छूटा और फिर वापस पहले में आया, तो पहले में वही जीव आया ना पहले में, यानी वो द्रव्य की सिद्धि हो जाती है। द्रव्य क्षणिक नहीं है ये बात सिद्ध हो जाती है, क्योंकि जिस पर्याय की बात कर रहे हैं वो फिर दोबारा प्राप्त होती है, उसको हम अंतर कहेंगे। तो कितने गैप के बाद फिर वो प्राप्त हुआ, वो उस पर्याय की प्राप्ति कब हुई, तो उसको कहेंगे हम अंतर प्राप्त। तो अंतर क्या सिद्ध करता है, द्रव्य तो वही का वही है, वापस उस लौट कर उसी पर्याय में आ गया।
सातवां पॉइंट, कोई यह मानता है कि वस्तु कूटस्थ है। कूटस्थ का अर्थ होता है कि जिसकी पर्याय नहीं हो, वैसा का वैसा रहता हो। तो कहते भाव के सिद्ध करने से यह तर्क खंडित कर दिया गया है, यानी भाव हमने अभी निक्षेप की अपेक्षा, निक्षेप की अवस्था आप जो कह रहे हैं,
नहीं निक्षेप में गए वो भाव, यहाँ भाव का अर्थ होता है पांच भाव। पांच भाव का अर्थ क्या हुआ, यहाँ चार भाव तो पर्याय रूप है, तो पर्याय रूप भाव सिद्ध करने से वस्तु कूटस्थ नहीं है, ये बात सिद्ध होती है।
नहीं नहीं, अभी इस बार लो ना, आपके औक्षमिक परिणाम चल रहे हैं और हो सकता है कि औदयिक भाव हो जाए, हो सकता है कि औदयिक भाव से क्षायिक भाव हो जाए, तो यानी वही द्रव्य के अलग अलग परिणाम चल रहे हैं, इसका अर्थ हो गया कि वो कुटस्थ नहीं है।
यानी कुटस्थ वाला वो पर्याय को ही नहीं मानता, और भावों में तो ये पर्याय रूप भाव की चर्चा है, यहाँ पर चार भाव तो पर्याय रूप भाव
है। और निक्षेप भाव निक्षेप से भी लगाना है तो कह सकते हैं कि जो अभी घर में बैठा हुआ सेठ था वो रास्ते में चलने लगा तो राहगीर हो गया, दुकान में गया तो ग्राहक हो गया, डॉक्टर के पास गया तो पेशेंट हो गया ना। तो वो जिस समय जिस रूप से उसकी अवस्था है उसको उस रूप कहेंगे, तो वो क्षणिक।
आठ जो बताए ना सत्संख्या, उसमें वो निक्षेप वाला भाव नहीं लेना है।
हाँ। आपने अभी निक्षेप की बात उठाई है, इसलिए मैंने उस पर घटित करके दिया। ये तो जो हमने अभी आठ देखे ना, उसकी अपेक्षा से यहाँ ये सर्वार्थ सिद्धि में ये प्रश्नोत्तर लिखे गए। कोई यह मानता है कि वस्तु सर्वथा एक ही है अथवा वस्तु सर्वथा अनेक ही है, तो कहते हैं कि अल्प बहुत्व के सिद्ध करने से यह तर्क खंडित कर दिया गया है। अब कह रहे हैं कि देखो प्रश्नोत्तर सर्वार्थ सिद्धि पृष्ठ 277 एंड 278। अब सूत्र चार से आठ तक का तात्पर्य रूप सिद्धांत ये तो है कि नहीं आपके? आपका कौन सा गुजरा है? जिज्ञासु जीवों को जीवादि द्रव्य तथा तत्वों का जानना, छोड़ने योग्य मिथ्यात्व रागादि तथा ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन आदि के स्वरूप की पहचान करना, प्रमाण और नयों के द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना तथा निर्देश स्वामित्व आदि और सत्संख्यादि के द्वारा उनका विशेष जानना चाहिए। हुँ? अभी सूत्र क्रमांक 9 को हम देखेंगे। अब सम्यक ज्ञान के भेद कहते हैं। यहाँ तो 5 ही बातें बताई हैं कि ज्ञान के भेद नहीं बता रहे, पूछ रहे बता रहे। ज्ञान के भेद कहेंगे तो हम 8 प्रकार से देखते हैं उसको, यहाँ तो सम्यक ज्ञान के भेद कह रहे हैं। हाँ बोलो।
मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम्।
ये बता रहे हैं कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। ये ज्ञान है यानी ये पर्याय ज्ञान है। ज्ञान 5 प्रकार के हैं यानी वो पर्याय की अपेक्षा से उसके भेद किए गए। अभी क्या कह रहे देखो, टीका मति ज्ञान की बात बता रहे हैं। 5 इंद्रिया और मन के द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। देखो यहाँ तो उन्होंने बहुत, जिसको हम कहेंगे स्थूल परिभाषा दी है, तो यानी ये निश्चित होता है ये खाली इसको ही पढ़ने से कि 5 इंद्रिया होनी चाहिए और मन होगा,
इसीलिए वो मुक्तन शक्ति अनुसार इसको जितनी इंद्रिया होगी,
यानी एक इंद्रिय के द्वारा मन भी कुछ नहीं है और अन्य 4 नहीं है, उसके द्वारा जो ज्ञान होता है, द्वारा यानी वो मीडिया है। वो मान लो कि अभी किसी को सिर्फ ऐसा होता नहीं है, 8 ही है, बाकी अन्य इंद्रिया नहीं, ऐसा मान लेते थोड़े टाइम के लिए, तो वो आंखों से ही जानेगा यानी क्या है, आंख तो देखती नहीं है, आंख मीडिया है, द्वार है जिसके माध्यम से वो जाने। इस तरह यहाँ जो लिखते हैं 5 इंद्रिया और मन के द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार, गुजराती में लिखा है क्या अपनी शक्ति के अनुसार, जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। ये आगे बात आने वाली है, लेकिन हम जानते हैं कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है, और परोक्ष इसलिए कहा है कि इन्हें निमित्तों की अपेक्षा है। इसलिए इसमें मति ज्ञान में 5 इंद्रिया और मन जानने में निमित्त है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, सो श्रुत ज्ञान है। यानी हमने कोई एक इंद्रिय के द्वारा किस बात को सुना और वो सुनकर हमें अन्य कोई बात याद आई, तो जो अन्य कुछ बात याद आई उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे ये तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, अब क्या होता है गांव-गांव में जाते तो हम यही बात बताते हैं, यहाँ बोला है कि नहीं याद नहीं है, फिर भी बोल देते। जैसा हमने यहाँ से कहा शक्कर, ये तो अभी आपने कर्णेंद्रिय से सुना, तो शक्कर ऐसा सुनते ही किसी के मन में ऐसा आवे, अरे वो सफेद, वो मीठी, वो शक्कर। किसी के मन में आवे आजकल शक्कर का क्या भाव बढ़ गया, किसी को ऐसा लगे अरे मुझे लाने के लिए बोला था मैं भूल गया, तो ये आगे की जो बातें हैं वो शुद्ध ज्ञान में आएंगे। क्या कहा, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को, अभी हम लिखा हुआ कुछ देखेंगे और लिखा हुए जो चीज है उससे हमें कोई अन्य बात याद आ जाए, आत्मा लिखा है तो हमें ऐसा लगे कि अरे वही आत्मा इसका मैंने 2 दिन पहले अनुभव किया था, तो वो शुद्ध ज्ञान में जाएगा। ये क्या कह रहे हैं, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना, यानी अन्य प्रकार से जानना। अवधि ज्ञान,
अवधि ज्ञान पढ़ने के पहले मैं कुछ आपको यहाँ से पढ़ के बताना चाहती हूँ। यह अर्थ प्रकाशिका ग्रंथ सदा सुखदास जी का टीका का ग्रंथ है, वो मति ज्ञान की परिभाषा तो हमने देखी सदा सुखदास जी, तो शुद्ध ज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। मति ज्ञान करी यानी मति ज्ञान के द्वारा निश्चय किया जो पदार्थ किसको अवलंबन करी किसी पदार्थ संबंध को लिए, यानी उस पदार्थ के संबंधी अन्य पदार्थ उसको जो जाने वो शुद्ध ज्ञान। अथवा जैसे हमने शक्कर कौन से इंद्रियों के द्वारा जानना, आपने शक्कर को कौन से इंद्रिय के द्वारा, इधर है आपके
देखो इन्होंने बताया, हाँ बोलो साहब जोर से।
अभी आपने शक्कर कहा तो आपने कर्णेंद्रिय से जाना,
वो उत्तर नहीं दे पा रहा था मैं, ऐसा किया तो मिसलीड हो गया, क्योंकि अपनी बुद्धि वापर नहीं, दूसरों के सहारे चलना है तो ऐसी मिस्टेक होती है। तो ये आप अपना दिमाग चलाओ, दो चार बार गलती होगी लेकिन एक बार आ गया ना, और मेरे से कभी भी कॉपी मत करना, मैं तो मिसलीड ही करता हूँ।
हाँ ये तो आपने मति ज्ञान से शक्कर शब्द सुना और फिर वो शक्कर आपको याद आ गया, ये क्या हुआ, शुद्ध ज्ञान, यही बात बताना चाहते।
फिर से पढ़ो।
देखो मति ज्ञान करी निश्चय किया जो पदार्थ, किसको अवलंबन करी, किसी पदार्थ संबंध को लिए, आपने तो शब्द सुना है, वो शब्द का अवलंबन करके कोई पदार्थ किसको जाने से शुद्ध ज्ञान, वो आगे सब उदाहरण वगैरह दे रहे हैं। अथवा दूसरी पद्धति से इंद्रिय और मन के मन करी निश्चय किया जो यह घट है, ऐसे तो मति ज्ञान है, मन से जाना या इंद्रिय से जाना कि यह घट है, घट को आपने देखा या घट को आपने मन के द्वारा जाना। अब कहते उस घट की जाति के अनेक देश में या अनेक काल में अनेक वर्ण रूप, धोला काला लाल पीला छोटा बड़ा अनेक अवगाहना रूप, वहाँ सोना का रूपा का लोहे का काष्ठ का पाषाण का चित्रांक का पीतल का तांबा का इत्यादि अनेक प्रकार का पूर्वे नहीं देखा नहीं श्रवण किया नहीं चिंतन में आया, ऐसा अपूर्व अनेक प्रकार के घटनी को देखते ही जानी जाए कि यह घट है, नहीं देखे हुए भी वो जान लिया ना उसने घट है, एक बार घट को देखा और उसके समान हो या उसके असमान हो उन सब घटों को हमने जान लिया मन के द्वारा। ऐसे घटनामा अर्थ को देखिए, अर्थ है पदार्थ, घट नामक पदार्थ को देखकर उसके सदृश विसदृश अनेक घटों को जाने से सुशुद्ध किया, हमने एक घट देखा और हमने कितने पॉसिबल है पूरा पूरा सब जो कुछ देखे है नहीं देखे वो सब घटों को हमने सोच लिया उसको जान लिया तो वो सुशुद्ध किया। अथवा जीव अजीव पदार्थों को इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा ग्रहण किया, उन्हीं को सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्पभूत्व आदि प्रकार से जानने में समर्थ हो सो श्रुत ज्ञान, यानी एक बात हमने कोई देख ली और उस पर ये सब घटित करके हम जान लेते हैं तो हो गया श्रुत ज्ञान। अथवा घट ऐसे दो अक्षर श्रवण करी कर्ण इंद्रिय द्वारा मति ज्ञान से शब्द मात्र ग्रहण करे सो मति ज्ञान, घट हमने सुना ये मति ज्ञान हुआ क्योंकि हमने शब्द सुना। अब इस घट शब्द श्रवण से घट पदार्थ वाच्य है और घट शब्द वाचक है, क्या कहा, घट ये शब्द जो है वो किसी को बताने वाला है, शब्द है वो वाच्य हो वाचक है वो किसको बताता है, घट नाम के पदार्थ को बताता है। ऐसे वाच्य वाचक संबंध का संकेत कराने का सामर्थ्य से जल भरने को यह समर्थ है, ऐसा घट के अर्थ क्रिया का प्रयोजन का ग्रहण करना, घट हमने शब्द सुना वो घट शब्द किसको बताता है, तो ये पदार्थ को बताता है, घट नामक पदार्थ को बताता है, परंतु हमने उसके प्रयोजन का भी प्रयोजन को भी जान लिया कि इसमें हम पानी भरते हैं। जैसे मैंने कहा पेंसिल, तो पेंसिल ये शब्द इसका इस पेंसिल नामक पदार्थ का वाचक है, अरे पेंसिल के द्वारा हम लिखते हैं ये हमने उसका प्रयोजन जान लिया वो उसका शुद्ध ज्ञान हो गया, तो इसको कहते अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान। वाच्य वाचक शब्दों का जो संबंध होता है ना, शब्द है वो वाचक है और अर्थ यानी पदार्थ है उसका वाच्य है, वो शब्द उसको बताता है और उसको वो शब्द सुनकर हम उस संबंधी सभी जो चीजें जान लेते हैं वो है अक्षरात्मक प्रतिज्ञा। अब कहते हैं अभी अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान कैसे होता है, तो शरीर को पवन का स्पर्श हुआ तो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा पवन का शीत स्पर्श जान्या सुतोमति ज्ञान, ठंड लगी ना हवा ठंडी लगी तो हमने स्पर्शन इंद्रिय द्वारा जान लिया वो हुआ मति ज्ञान। फिर इस पवन के स्पर्श ने ही ऐसा विचार हुआ तो यो पवन वायु के रोगी के रोग वृद्धि का कारण है, ऐसे ठंडी हवा से किसी को सर्दी हो सकती है अपनी भाषा में ना, तथा इस पवन तय वर्षा का अभाव होएगा वहाँ वर्षा आवेगी। हम जो पवन के स्पर्श से जान लेते हैं ना, बरसात के दिन है बहुत जैसी गर्मी ऐसे हो जाती है तो अभी बरसात हम अनुमान लगाते उसके ऊपर से, अथवा इस जाति के वृक्ष फलेंगे फूलेंगे, अभी ऐसे मौसम शुरू हुआ है ये ठंड ऐसी शुरू हो गई तो अभी ये मौसम आ गया ऐसे इस फलों का या फूलों का जो कुछ है, या वृक्षों के फल फूल नहीं उपजेंगे जैसे अभी हमारे बरसात हो रही है, ये तो ये बरसात का सीजन नहीं है और हो रही है तो हम क्या जान लेते हैं कि ये तो अभी अमुक अमुक ये मौसम खराब हो गया अभी फसल नहीं होने वाली
नहीं मिलेंगे।
यहाँ पवन तय लोकनी के रोग की वृद्धि होगी व रोग घटी जाएगा इत्यादि पवन के स्पर्श से अनेक प्रकार का ज्ञान होना सो अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है। कितना बताया अक्षरात्मक में तो संकेत बनाए थे हमने किसी वस्तु को किसी शब्द से जाना, हमने शब्द उसके नाम दिए थे तो नाम लेते हमको वो पदार्थ ख्याल में आता है और वो पदार्थ का प्रयोजन क्या वो ख्याल में आता है वो तो अक्षरात्मक हुआ, और अनक्षरात्मक ये जो बाकी अभी पवन के उन्होंने उदाहरण देके समझाया वैसे ऐसे श्रुत ज्ञान आवरण के भेद जो इंद्रिय अनिंद्रिय आवरण नामक कर्म उसके क्षोभम तय दो प्रकार श्रुत ज्ञान है अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। यहाँ ऐसा जानना अभी ये जरा अंडरलाइन किया हूँ मैं बताती हूँ आपको, जो कर्णेन्द्रिय बिना अन्य इंद्रिय के द्वारा अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान है सो एकेन्द्रियादि समस्त जीवनी के प्रवर्तक है, क्योंकि एकेन्द्रियों के श्रुत ज्ञान कैसे होगा क्योंकि हमने शक्कर सुना और शक्कर को जाना वो तो सुनते ही नहीं ना, तो केवल अक्षरात्मक ही श्रुत ज्ञान नहीं अनक्षरात्मक भी होता है, तो जिसको जितने इंद्रिय संबंधी ज्ञान है तो उस ज्ञान के द्वारा वो ऐसा बाकी उसमें जैसे उन्होंने ये अपने के लिए अच्छा है कि नहीं है बहुत ज्यादा ठंड है उनको भी पता चलता है कि नहीं चलता है, ज्ञान तो वहां भी चल रहा है तो वहां क्योंकि हमने देखा मति शुद्ध ज्ञान तो एक इंद्रिय से सब जीवों को तो वहां ये अनक्षरात्मक चलता है। सो तो प्रमाण के कथन में ग्राह्य नहीं, ये प्रमाण ज्ञान की बात चल रही है प्रमाण शुद्ध ज्ञान की बात चल रही है तो यहाँ किसको लेना है
अक्षर
ये बताया ना सम्यक ज्ञान के भेद बता रहे हैं और उसमें शुद्ध ज्ञान को बताया है और प्रमाण किसको कहने सम्यक ज्ञानम प्रमाण सम्यक ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं, ताका अधिकार नहीं यानी यहाँ उसकी बात नहीं है। और जो श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा शब्द श्रवण रूप मति ज्ञान के पीछे ने मति ज्ञान पूर्वक अक्षर के अर्थ जानने रूप मन के द्वारा शास्त्र का ज्ञान हो सो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान यहाँ प्रमाण में प्रधान है। ग्रंथ या अक्षर पढ़कर या सुनकर हमें जो बोध होता है वो यहाँ प्रधान रूप से ग्रहण किया अक्षरात्मक। या करी नाम सहित तत्वाधनी का स्वरूप नीके जान्या जाए है, या उसको क्यों क्योंकि हमने तत्वों के नाम सीखे और नाम लेकर हम उस तत्व का भाव हमारे ख्याल में आता इसी को तो शुद्ध ज्ञान कहा। आश्रव तत्व कहने से आश्रव राग को कहते हुए राग वो दुख रूप है वो बाकी तो सभी उसके आगे चलती रहती है ये तो अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान हुआ। बाकी वो अभिज्ञान वगैरह की बातें हैं आगे पढ़ेंगे आप जो विषय आएगा तो मैं बताऊंगा। ये थोड़ी बातें विशेष खास लगी मुझे जो यहाँ नहीं लिखी थी।
तो अब देखते हैं अवधि ज्ञान किसे कहेंगे, जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय या मन के निमित्त के बिना रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। यहाँ एक बात हमें नक्की करनी है कि पहले में पहले ये जो अवधि ज्ञान है उस होने में इंद्रिया मन के निमित्त की आवश्यकता नहीं है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि वह रूपी पदार्थों को ही जाने। अवधि ज्ञान किसको जानेगा? हाँ, कौन है रूपी पदार्थ? पुद्गल एक ही द्रव्य जो है वो रूपी है, पदार्थ यानी यहाँ द्रव्य। तो मेरा ये प्रश्न है कि अवधि ज्ञान से आत्मा का अनुभव होगा कि नहीं? प्रमाण ज्ञान बताया आगे। बहुत अच्छा, इतना तो मुझे अपन बुद्धि वापरेंगे ना बराबर उत्तर आता है, दूसरे का सुनोगे तो यार गॉन। क्या बताया है? तीन बातें हमने देखी। पहले में पहले ये कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, यानी सकल प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं, एक विकल प्रत्यक्ष और एक सकल प्रत्यक्ष, यानी विकल यानी एक देश प्रत्यक्ष और दूसरा होता है वो पूर्ण देश प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान को पूर्ण देश प्रत्यक्ष कहेंगे, सकल प्रत्यक्ष। अब यहाँ एक बात हमने देखी कि अवधि ज्ञान जो है वह एक देश प्रत्यक्ष है, उसको उसका ज्ञान अवधि ज्ञान जब कार्य रूप होता है तो उसमें इंद्रिय और मन के सहायता की कहो या निमित्त की अपेक्षा नहीं है, बिना उनके वो जाने। दूसरी बात पुद्गल को ही जाने, अन्य किसी को नहीं जाने। तीसरी बात द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा से, यानी ये पुद्गलों को जानेंगे तो पुद्गल की संख्या कितनी है उसमें भी मर्यादा है। क्षेत्र कितना है पुद्गलों का, कहां कितने क्षेत्र तक जानेगा, तो उसको भी मर्यादा। काल की मर्यादा और भाव की मर्यादा। अब ये थोड़ी सी समझने जैसी बात है कि ये जो द्रव्य की मर्यादा की जो बात चलती है तो उसका अर्थ ऐसा लेना कि जो अधिक से अधिक द्रव्य को जाने यानी पुद्गल के स्कंदों को जाने, सुनना हो दिव्य में, यानी मान लो कि 10 करोड़ पुद्गल परमाणु का स्कंद है, उसको जाने वह अवधि ज्ञान अच्छा बड़ा या कोई 1000 परमाणु के स्कंद को जाने, स्कंद तक को जाने, मतलब
उसकी लोअर लिमिट।
हाँ, वो हमने लोअर लिमिट बताई। तो किसका ज्ञान बड़ा और अच्छा, अधिक परमाणु को जाने उसका या कर्म परमाणु एक परमाणु के स्कंदों, क्योंकि एक परमाणु को तो मति शुद्ध ज्ञानी जानते ही नहीं और अवधि ज्ञानी विशिष्ट अवधि वाले ही जानेंगे। तो मेरा ये प्रश्न है कौन सा ज्ञान बड़ा या वो अच्छा, जो कम परमाणु को जाने। ये बात बराबर है, यही हमें बताना है। यहाँ द्रव्य की जब मर्यादा बता रहे हैं तो मिनिमम स्कंदों को जाने उसका ज्ञान अच्छा और सुपीरियर। कैसा आप नहीं समझे? देखो यहाँ तो आधे के ऊपर मेरे सहित सभी चश्मा पहनने वाले हैं, सभी हैं एक छोड़ के। हाँ, तो क्या होता है कि जो आपको जब आंख तपासनी रहती है ना, यानी आई टेस्टिंग, तो मैं मेरी बात बता तो आपकी जो होती होगी तो आप समझना। तो जिंदगी में पहले टाइम मेरे को जब चश्मा लगा तो डॉक्टर बोला चलो चलो अंदर चलो, तो एक छोटी सी रूम में लेके गया, बैठो बोला, तो कुर्सी पे बिठा दिया और एकदम लाइट बंद कर दिया। तो मैं डर गया, कि अंधेरे में मेरी आंख कैसा देखेगा, इतने में लाइट लगाया उसने, सामने एक बोर्ड दिखने लगा, तो उसमें कुछ कुछ अक्षर लिखे थे, अभी मैं तो कुछ भी बोलूंगा, ए बी सी डी, उसके नीचे छोटे अक्षर थे, ई एफ जी एच, उसके नीचे और छोटे अक्षर थे, ऐसे करते करते नीचे ओ पी था, क्यू था सबसे नीचे। तो जो बड़े बड़े अक्षर को जाने उसकी आई साइट अच्छी, या छोटे छोटे अक्षर को जाने उसकी आई साइट अच्छी, हाँ ख्याल में है ना। और जिसको छोटे तक को जाने तो उसको चश्मा लगेगा कि नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखें अच्छी जाने दो, ख्याल में है। यानी वैसे भी जो बहुत बड़े अनंत स्कंदों को जाने, अनंत परमाणुओं के स्कंद को जाने, उसका अवधि ज्ञान छोटा, और जो कम परमाणु के स्कंद को जाने उसका अवधि ज्ञान बड़ा। ये सिर्फ द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्य यानी यहां संख्या, क्या कहा फिर देखो, तो फिर से परिभाषा हम देखते हैं, कह रहे हैं जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित, ये मूल बात है, मर्यादा चाहिए, और फिर इंद्रिय या मन के निमित्त बिना, ये दूसरी बात बताई, और तीसरी बात बताते हैं रूपी पदार्थ को जानते हैं, ऐसे ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। तो ये द्रव्य की अपेक्षा ख्याल में आई, अब बताते हैं क्षेत्र की अपेक्षा। क्षेत्र यानी क्या, कि मान लेते हैं कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति है, उसको इस रूम में जितने परमाणु है, परमाणु नहीं स्कंद है, उन स्कंदों को मैं जान सकता हूं। लेकिन अरविंद भाई दोषी जो है वो पूरे निर्मला निवास में जितने सारे पुद्गल परमाणु है उनको जानता है, दूसरे अरविंद भाई जो है वो पूरे सायन में जितने स्कंद है इन सबको जाने, और हमारे दोषी साहब पूरे बंबई में जितने परमाणु है उनको जाने, और हमारे मिली भाई पूरे महाराष्ट्र में जितने परमाणु, नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, मुझे कहना है स्कंद, स्कंदों को या परमाणुओं के, स्कंद को जानता है, बंध को जानता है। तो किसका ज्ञान अच्छा, अभी आप बताओ, ये बंधा, हाँ बोलो बोलो, हाँ जो सबसे अधिक क्षेत्र को जाने, क्योंकि उसका ज्ञान पावरफुल है ना। ये सिर्फ रिवर्स यानी जिसको हम कहेंगे कि उल्टी बात द्रव्य के बारे में, जो कम अनंतों की संख्या को जाने उसका अधिक बड़ा। अभी वो उसमें बहुत सारे भेद हैं, अवधि ज्ञान के भी हमने तीन भेद देखे थे, मालूम है निमली भाई, मिली भाई, इसमें सर्वोत्कृष्ट कौन सा, अच्छा अच्छा, ये सर्वावधि जो अवधि ज्ञान का प्रकार है वो एक परमाणु को जाने में, एक परमाणु
तक को जाने,
हाँ
एक परमाणु तक।
अरे भाई ये तो नक्की हो गई ना बात, कि जो छोटे को जाने वो बड़े को तो जाने ही जाने, हाँ आपका कहना है कि एक परमाणु तक के जानेंगे, मैं तो कहूंगा जो एक परमाणु को जाने वो दो परमाणु को भी जानेगा कि नहीं, और दो को जानेगा तो दस को दस जानने वाला, हजार को हजार जानने वाला, असंख्यात असंख्यात जानने वाला भी अनंत को जानेगा, क्योंकि तो बड़े बड़े ही है, हमने चश्मा लिया ना अभी दो मिनट पहले, ऐसा आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक बड़े से लेके छोटे तक ये सर्वावधि जानता है, सर्वावधि ज्ञानधारी जीव। अब क्या होता है, ये सर्वावधि ज्ञान सिर्फ तद्भव मोक्षगामी जीवों के होता है, परमावधि में, और सर्वावधि अपन अभी सर्वावधि की बात कर रहे हैं, और सर्वावधि भी मुनियों को ही, यानी वो तद्भव मोक्षगामी जीव होते हैं उनके होते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे भेद हैं, अपन तो बहुत कम ले रहे कि वर्धमान है, हीयमान है, वगैरह वगैरह आ गया है इसमें, इसमें दिया है
अभी अभी तो सामान्य,
अच्छा आगे के सूत्रों में आएगा, उस टाइम उसको देखेंगे। तो क्या बताएं, देखो ये हो गया क्षेत्र, और काल की अपेक्षा से भी ऐसा ही बता सकते हैं कि अभी हम जितने स्कंदों को जान रहे हैं अवधि ज्ञान, वो उन्हीं स्कंदों के 10 साल पहले कौन सी अवस्था थी, यानी 10 साल तक की अवस्था को जाने, और भविष्य के 10 साल तक की अवस्थाओं को जाने, कोई 1000 वर्ष तक के उनके अवस्थाओं को जाने, और कोई 1,00,000 वर्ष तक, यानी काल जितना लंबा होगा फ्यूचर में या पास्ट में उसका अवधि ज्ञान अच्छा। तो ये क्षेत्र, काल और भाव, भाव यानी उसके जो कोई पर्याय हैं, किस समय क्या क्या है वो जाने। अब ये चार बातें हो गई ना, क्या बताएं, देखो अवधि ज्ञान जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय या मन के निमित्त के बिना रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं।
प्रत्यक्ष यहाँ कोई इंद्रिया या कोई मन के द्वारा जानने की बात नहीं, वो डायरेक्ट आत्मदेशों के द्वारा जाना है। मनपरिज्ञान की बात है, देखो मनपरिज्ञान की परिभाषा देखते हैं। मनपरिज्ञान पहले होता किसको होता है, भावलिंगी मुनियों के ही होता है मनपरिज्ञान। तो अवधि ज्ञान भी जिसको कहिए ना प्रत्यक्ष ज्ञान है, देश प्रत्यक्ष कहिए, और मनपरिज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान, वो भी आत्म प्रदेशों के द्वारा ही होता है। केवल ज्ञान तो पूर्ण प्रत्यक्ष है, परंतु ये कैसे पार्शल, परिपूर्ण ज्ञान नहीं है, थोड़ा जानते हैं, उसमें भी लिमिट है। अवधि ज्ञान किसको, कौन से द्रव्य को जानता है, रूपी यानी पुद्गल को ही जानता है, और मन परिज्ञान आरोपीपन वो दूसरे के मन में स्थित है।
अभी पहले हमें ये पूछना था, आपने अभी बताया कि ये मन परिज्ञान आपको हमको होगा कि नहीं, नहीं किसको होगा, मुनि, कैसे मुनि, भावलिंगी मुनि किसको कहना, बहुत अच्छा, छठे सातवें के, छठे सातवें वालों को कहेंगे कि नहीं, हाँ सुनना भाई, भावलिंगी मुनि उन्हीं को कहेंगे कि जिन्होंने आत्मा का अनुभव करते हुए तीन कषाय चोपड़ी का अभाव करके या उसका अनुदय करके जो अपने स्वरूप में स्थिर है और उस कारण से उनमें जो वितरकता वर्त रही है उनको भावलिंगी कहेंगे। अब वो सातवें गुणस्थान में होते हैं तब आत्मा का अनुभव करते हैं, और छठे गुणस्थान में आते हैं तो वह 28 मूल गुण का पालन करने के उनके परिणाम सहज रूप से होते हैं, करने नहीं पड़ते। ऐसे
उपयोग रूप तो छठे में होगा, मनपरिज्ञान का उपयोग रूप कार्य छठे में होगा, परंतु मनपरिज्ञान किसको होता है तो छठे से लेकर 12वें तक होता है।
लेकिन सुनना भाई,
ज्ञान तो पूरा होता है ज्ञान,
यानी आपने क्या कहा समझ में नहीं आया, सातवें आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें बारहवें जो भी गुणस्थान हो वहाँ मन परिज्ञान का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि तो शुद्धोपयोग में है। अब छठे में कोई मन परिज्ञानी है और छठे में आए हैं तो उसका उपयोग करेंगे ही, ऐसा भी नहीं है, है तो पावर जानने की कैपेसिटी बिल्कुल है, लेकिन मान लो कि आपके पास 10 करोड़ है तो क्या हर समय आप 10 करोड़ वापरेंगे थोड़ी,
ऐसा नहीं, मोबाइल आप लाए हो स्वाध्याय में तो आप नहीं वापर रहे, वो जो वापर दे उसकी बात नहीं है नहीं, और बाद में भी आपके पास है तो जरूरी नहीं कि आप वापरेंगे या नहीं वापरेंगे, ऐसे छठे में उसका यूज होगा, ऊपर के गुणस्थानों में उसका यूज नहीं होता है, परंतु ज्ञान की पर्याय में वो है। ज्ञान की परे मति शुद्ध अवधि मनपरिय, चार ज्ञान के धारी कहेंगे हम, उपयोग रूप बात होती है तो एक ज्ञान होगा एट ए टाइम, परंतु ज्ञान की पर्याय तो पूरी रहती है, लब्धि और उपयोग मिलकर होती है। जब उपयोग छठे में भी लब्धि रूप कहेंगे, जब तक उपयोग रूप नहीं है तब
तक, वही तो मैं बता रहा हूं,
जिस काल में उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है उस काल में वो, जैसे हम इंद्रियों, पांचों इंद्रियों के द्वारा एट ए टाइम जानते हैं कि नहीं जानते, जानते हो आप?
अरे बाप रे, आपने गड़बड़ कर दिया। बोलो बोलो।
एक समय में एक इंजन के वो इतना उपयोग फास्ट पलटता है, हमें लगता है हम पांचों इंजन के द्वारा जाते हैं, परंतु हम कितने, हम संगी पंचेंद्रिय कहलाते हैं ना, हमारा ज्ञान का उगाड़ कितना है, तो पंचेंद्रिय का ज्ञान का उगाड़। हमारी वर्तमान ज्ञान की पर्याय पांचों इंद्रियों के जानने रूप, ज्ञान की पर्याय का उपयोग रूप नहीं, उपयोग एट अ टाइम एक इंद्रिय के द्वारा जानने का कार्य कर, देखने का सुनने का। हम तो ऐसे लगता है हम देख भी रहे सुन भी रहे, पर तो उपयोग इतना फास्ट पलटता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमने पांचों इंद्रियों के द्वारा जानने का कार्य किया।
तो इसमें एक बात निश्चित ध्यान में रखनी चाहिए, एक इंद्रियों के द्वारा जो कुछ हमारा उपयोग चल रहा है वो एक अंतर मुहूर्त तक सतत चले तो ही वो बात ज्ञान में आती है। मान लो हम टीवी देख रहे हैं, अभी मैच चल रही थी ना, क्यों तो मैच में क्या कर रहे थे हम, अरे अभी तो चलो चलो खाना खाने गए, नहीं 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 इधर ही रहो, क्यों, वो अभी बहुत इंटरेस्टिंग मैच चल रही है, तो हम मैच भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, ठंडी हवा भी ले रहे हैं, उनकी कमेंट्री भी सुन रहे हैं। तो यानी पांचों इंद्रियों का कार्य वहां चल रहा है, लेकिन जिस समय वो एकदम जोर से चक्का मार रहा है तो तुम्हारे मुंह में यहां तक हाथ जाता है या मुंह में गौर जाता है, लेकिन उसको चपाते नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पांच इंद्रिया होते हुए भी एट ए टाइम एक इंद्रिया ही उपयोग रूप से कार्यरत है, और वो कार्य एक अंतर मुहूर्त जो चले,
वो अंतर मुहूर्त कितना छोटा है,
बहुत छोटा है,
अपने ख्याल में भी नहीं आता इतना छोटा है,
क्योंकि मति ज्ञानी श्रुत ज्ञानी के जो जीव है उनके तो एक अंतर मुहूर्त तक किसी में हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं करते तो बात भी ख्याल में नहीं आती। तो बात ये चल रही थी कि ये इंद्रियों के माध्यम से हम पांचों इंद्रियों के एट अ टाइम नहीं जानते, पहली बात। दूसरी बात, केवली तो जानते हैं कि नहीं, तो केवली जानते हैं पर इंद्रियों के द्वारा नहीं जानते, उनका तो अतीन्द्रिय ज्ञान है,
निरूपक है, सब उपयोग रूप है, उनके कोई लब्धि रूप नहीं, उनका पूरा ही ज्ञान उपयोग रूप में ही है, लब्धि और उपयोग यानी ज्ञान का उघाड़ और जानने रूप उपयोग रूप जो कार्य, उपयोग यानी कार्य किसमें चल रहा है, जैसे हम मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं, परंतु हमें एक ज्ञान की पर्याय में मति शुद्ध दोनों ज्ञान है, उपयोग मति ज्ञान चलेगा फिर शुद्ध ज्ञान यानी उसमें क्रम पड़ेगा, एट ए टाइम मति ज्ञान भी हमारे पांचों इंद्रियों द्वारा एट ए टाइम नहीं होगा, चक्षु इंद्रिय के द्वारा जानना होगा फिर करने दिया या उसमें भी क्रम पड़ेगा। तो जो हमारा उघाड़ रूप ज्ञान है, जितना सूक्ष्म रूप उघाड़ है उसको लब्धि कहते हैं, और जो हम जिसमें अपना उपयोग चलता है उसको उपयोग, ये लब्धि को समझाने के लिए हम वो धारणा में उसको भी लब्धि कहते हैं, तो एक्चुअली लब्धि नहीं, जितना ज्ञान का उगाड़ है उसको लब्धि कहते
हैं। यानी मान लीजिए अभी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, आपको अंग्रेजी का ज्ञान है, मान लो मराठी का ज्ञान है, मारवाड़ी का ज्ञान है, कौन से तमिल का ज्ञान है, लेकिन अभी उपयोग रूप तो आप हिंदी में है, अभी शास्त्र पढ़ रहे, जब आपका ड्राइविंग का ज्ञान थोड़ी गायब हो गया, ज्ञान का जो उगाड़ जो कुछ है वह तो लब्ध रूप से पड़ा है। तो ये बात हुई कौन सी कि लब्धि और उपयोग में जो हम बात कर रहे थे, ये मूल बात कहाँ से निकली,
मन परिज्ञान से हम चले गए, उसका उदाहरण दिया था।
हाँ भाई,
मन परिज्ञान की परिभाषा पढ़ी।
हाँ, मन परिज्ञान की परिभाषा, मैं कुछ और अन्य बात बता रहा था और आपने उसको थोड़ा सा अलग सा किया।
मन परिज्ञान से ये बात इसलिए निकली कि मन परिज्ञान उपयोग रूप छठे गुण स्थान में होता है, बाद में उसका ज्ञान है ऐसा कहेंगे, बारहवें तक कहेंगे मन परिज्ञान, तो उसका जो कार्य चलेगा जानने का भाव हो सकता है वो भी छठे में, जिसको वो दी है क्या ज्ञान वो प्रकट है, उसको कोई ऐसा भाव नहीं भी आएगा कि इसके मन में क्या चल रहा है, उनके थोड़े ऐसे
बात ऐसी जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहे अपने स्वरूप को जानते हुए इतने सुख में वर्त रहे हैं, तो तुम्हारे मन में कौन सी गंदी बात चल रही है, कौन से पुद्गल कितना पैसा कमाऊं, किसको कैसा ठगाऊं, किसको कैसे टोपी लगाऊं, वो बात जान के इनको क्या करना। और हमारे तुम्हारे जैसे तो ऐसे ही दिमाग में बातें चलती हैं, वो कहां आत्मा की बात सोचते थोड़ी होंगे। और मान लो, फर्ज कर लो कि कोई व्यक्ति सामने वाला आत्मा के बारे में सोच रहा है तो मन परिज्ञानी वो नहीं जानेगा, क्योंकि रूपी पदार्थ के बारे में बात चलती हो तो जाने। हाँ, ये बात है। तो मुझे और कुछ अन्य बात बतानी थी, ये बहुत दूर दूर ले जा रही मुझे। हमारी बात ये निकली थी, ये कौन जानेगा मन परिज्ञान किसको होगा, तो कहेंगे मन परिज्ञान तो भावलिंगी मुनि को होगा। और भावलिंगी मुनि को होगा इसका अर्थ क्या होगा, अन्य भी कोई मुनि होते हैं क्या? हाँ होते हैं। कौन से होते हैं? द्रव्यलिंगी मुनि। तो द्रव्यलिंगी मुनि किसे कहना? तो कहते हैं द्रव्यलिंगी मुनि वे हैं कि वे तो 28 मूलगुण पालन तो अवश्य करते हैं, यानी उसमें एक भी मूलगुण में किंचित भी खामी नहीं है, लेकिन उनकी आत्मानुभूति नहीं है, तीन कषाय की चौकड़ी के अभाव पूर्व वितरकता नहीं है, ऐसे भी मुनि होते हैं। और ये बात निश्चित है कि कोई भी भावलिंगी होने के पूर्व में उसको द्रव्य लिंगत्व लेना ही पड़ता है। कपड़ा पहने पहने, परसों कोई आया था मेरे को बता रहा था, जिससे हमने पेपर खरीदा ना, पैसा लेने आया था, बोलता अरे तुम्हें आटली बड़ी बात सारी करी छे, एम छे तेम छे, उज्ज्वला की पुस्तक दी थी उसको पढ़ने, तो बहुत खुश रहा, बोलता हाँ देखो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना तो क्या नहीं होता है। मैंने कहा अच्छी बात है, तो तुमने खबर न दी मेरे को सुन कि एक कोई ऐसा डोमबारी था, डोमबारी बोले तो आप क्या बोलते हैं, नट जिसको कहते हैं, वो दोरी पे नाचता है, ऐसा डुम डुम बजाते तो दोरी इधर से उधर ऐसा ऐसा रख के चाहता है आगे, तो वो इतना कॉन्सेंट्रेशन किया उसने कि वो यहां से वहां तक जाने के बीच में ही उसको केवल ज्ञान हो जाएगा। ऐसा कुछ है क्या मैंने? हाँ, ऐसा कुछ बताया मैंने। हाँ, वो कुछ बहुत लंबी स्टोरी है, तो उसने तो बहुत कुछ बताया। एक राजा का बेटा था, उसको हम उसको डुम्बारी बोलते हैं, आप जो भी बोल रहे हैं, वो जो खेल खिलाते ना, वो उसकी लड़की पर इश्क हो गया, तो उसने बोला तू ऐसा थोड़ी करेगा, तो तू पहला ये करके दिखा ऐसा इसके ऊपर, हमारे नाच में शादी करनी है तो दूरी पे चल के दिखा तार पर, तो मैं तुझको मेरी बेटी दूंगा। तो गया वो, अब चलने लगा तो उसको तो इतना कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो केवल ज्ञान हो गया, तो खड़ी खड़े तो वैसा मैं कहता हूं कपड़ों के साथ किसी को मुनि अवस्था प्राप्त नहीं होती। मुनि अवस्था प्राप्त किए बिना शपथ श्रेणी नहीं मांडा जाएगी, शपथ श्रेणी मांडे बिना केवल ज्ञान नहीं होगा। अब उन्होंने ये बात बताई, तो अपनी बात हो रही थी द्रव्यलिंगी मुनि की, कि जो 28 मूलगुण तो यथोचित पाले, आगम के अनुसार पाले, भले उनको बाह्य में तो मतलब अंतरंग की शुद्धि नहीं है, फिर भी उनको द्रव्यलिंगी कहेंगे, ऐसी बात है, तो उनको भी मनपरी ज्ञान नहीं होगा। ये तो सिर्फ भावलिंगी मुनि को ही होता है। अब विशेष बात हम कल करेंगे। भावानी के ज्ञान से सूजे लोकारो चाणी मस्तकनम सदा ले कहो।